आस्था, जो अभी कुछ ही देर पहले सबके साथ हंसते हुए मेंशन में एंट्री कर रही थी, अचानक गायब हो चुकी थी। सबकी सांसें जैसे हलक में अटक गई थीं। वहीं वंशिका और रौनक, जो पूरे एंट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अब कांपते हुए उस कैमरे को देखने लगे, मानो उसमें इस रहस्य का कोई सुराख मिल जाए। उनके हाथों से कैमरे छूटकर सीधे जमीन पर गिर पड़े थे। अब सब लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। वहीं तब तक रश्मि को इस बात के बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि उसे अंदर ले जाने के बाद वंशिका ने उसकी दवाइयां दे दी थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सो गई थी। इधर सब लोगों के चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। तभी प्रियंका अचानक खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से आस्था को कोई उठाकर ले गया। नहीं, दादाजी पूरी गंभीर आवाज में बोले थे, ऐसा कैसे हो सकता है? सिंघानिया मेंशन के बाहर से कोई हमारी बहू को उठाकर ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दादाजी लगभग पागलों जैसी बातें करने लगे थे। उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उनकी सांस रुक जाएगी। वहीं नानी माँ सफ़ेद पड़े चेहरे के साथ एक जगह खड़ी थी, मानो उनकी पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई हो। फिलहाल ठीक उसी वक्त अरमान, जो बिना किसी भाव के वहां खड़ा था, उसके ठीक पीछे आकाश, सुमित और ध्रुव आकर खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे शेरों का राजा आगे खड़ा हो और पूरी सेना उसके पीछे खड़ी हो। चारों के चेहरे पूरी तरह गंभीर थे। जल्दी ही सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजकर सिंघानिया मेंशन के आसपास हर जगह चेक कर लिया गया, लेकिन आस्था का कहीं कोई नामोनिशान नहीं मिला। सभी के चेहरे हार और डर से भर चुके थे। मारिया और टाइगर उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि अरमान ने उन्हें उनके बच्चे के साथ सुरक्षित रहने के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया था, ताकि वे वहां आराम से रह सकें और उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सिंघानिया मेंशन के बाहर से ही आस्था को अगवा धर लिया गया था। तभी अचानक गार्ड भागते हुए अंदर आए। सर, मैडम कहीं नहीं मिल रही। ये सुनते ही अरमान की आंखों में खून उतर आया। कमरे में मौजूद हर इंसान को महसूस हो गया कि अब जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। इस वक्त सभी की आंखों में आंसू थे। मनोज जी तो अपना सिर पटक पटक कर रो रहे थे कि उनकी आस्था के साथ ऐसा कैसे हो गया। हर किसी को बहुत बुरा लग रहा था। रौनक की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अंश के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और अरमान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। आहान, ध्रुव और आकाश, सभी की आंखों में नमी थी। सभी अच्छी तरह समझ रहे थे कि आज जो कुछ भी हुआ है वो कितना बड़ा और भयानक है। तभी राधिका ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमें एक बार सब कुछ चेक करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि आस्था इस तरह से कैसे गायब हो सकती है। अभी तो वो सबके साथ ही थी, रश्मि के साथ ही तो अंदर आई थी, फिर अचानक कहाँ जा सकती है? ये कहते हुए राधिका भावुक होकर रो पड़ी। राधिका को देखकर सुमित तुरंत उसके पास गया, उसे संभालते हुए बोला, शांत हो जाओ राधिका, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, मुकाबला करने का है। ये कहते ही सुमित ने नौकरों को आदेश दिया और जल्दी ही सीसीटीवी फुटेज चेक की जाने लगी। लेकिन ये देखकर सुमित की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। सभी सीसीटीवी कैमरे बंद थे। ये दृश्य देखकर आकाश की भौहें तन गईं। वो सुमित की ओर देखकर बोला, सिंघानिया मेंशन की सीसीटीवी फुटेज इस तरह कभी बंद नहीं हो सकती, जब तक कि कोई अंदर आकर इन्हें खराब ना करे। ये पूरा सिस्टम मारिया ने डिजाइन किया है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता और ना ही इतनी आसानी से कोई इसे ब्रेक कर सकता है। वो थोड़ा रुका, फिर गंभीर आवाज में बोला, अगर सीसीटीवी बंद है तो इसका मतलब साफ है, कोई सिंघानिया मेंशन के अंदर आया था और उसे ये भी पता था कि अरमान उस वक्त घर पर नहीं है। ये सुनते ही ध्रुव और आहान एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अभिमान जी कांपती आवाज में बोले, बेटा, कल सिर्फ कुछ ढोल नगाड़े वाले ही घर पर बात करने के लिए आए थे, हमने ही उन्हें रश्मि बेटी के स्वागत के लिए बुलाया था, इसके अलावा कोई भी बाहर का इंसान घर में नहीं आया। ये सुनते ही आहान के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई, वो तुरंत ढोल वालों की तरफ बढ़ा, जो सब सिर झुकाए खड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहले ही उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। आस्था के गायब होने की खबर सुनते ही जो जहां था उसे वहीं रोक लिया गया था और अब हर नजर उन्हीं ढोल वालों पर टिक गई थी, क्योंकि शक की सुई सीधे उन्हीं की ओर घूम चुकी थी, या फिर यूं कहो कि उन्हें वहीं कैद कर लिया गया था और अब बिना परमिशन के उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। तभी आहान ने आगे बढ़कर उन ढोल वालों को एक एक करके ध्यान से देखना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने उनकी गिनती की वो ठिठक गया। वहां केवल 6 ढोल वाले थे, जबकि आहान ने कुल 60 ढोल वाले फाइनलाइज किए थे। इसका मतलब साफ था, कल रात वॉशरूम जाने के बहाने से एक ढोल वाला कुछ देर के लिए गायब हुआ था और उसी वक्त उसने घर की सीसीटीवी फुटेज काट दी थी। ये पूरा षड्यंत्र समझते ही आहान ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, क्यों मैं ये सारी बात नहीं समझ पाया? अरमान भाई के यहाँ ना होने का किसी ने पूरा फायदा उठाया है और सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था, ताकि आस्था भाभी को आसानी से अगवा किया जा सके। कहीं ना कहीं खुद पर गुस्सा निकालते हुए उसने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोला, क्यों हूँ मैं इतना बड़ा गधा,
क्यों? ये देखकर ध्रुव तुरंत आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। पागल हो गया है क्या तू? खुद को क्यों मार रहा है? आकाश भी पास आकर बोला, आहान, अभी खुद को दोष देने का वक्त नहीं है, हमें सोचना होगा कि आगे क्या करना है। तभी सुमित ने भी उसे संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ आहान, शांत हो जाओ, अभी हमें दिमाग से काम लेना होगा, गुस्से से नहीं। आहान की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखों में गुस्सा, पछतावा और डर तीनों एक साथ साफ नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अरमान अब भी खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उसकी मुठ्ठियां कस चुकी थी, आंखों में खून उतर आया था और चेहरे पर एक ऐसा सन्नाटा था जो आने वाले तूफान का इशारा दे रहा था। अब ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये सीधा सीधा अरमान को खुली चुनौती थी। अविनाश का गुस्सा इस वक्त अपने चरम पर था, उसकी आंखों में खून उतर आया था और आवाज में ऐसी कड़वाहट थी कि हर कोई सहम जाए। अविनाश ने अरमान की कॉलर पकड़ ली और उसे जोर से दीवार के साथ लगा दिया। मेरी बहन आस्था को तुम्हारे दुश्मन ने अगवा किया है अरमान, उसकी आवाज गूंज उठी, और मुझे मेरी बहन सही सलामत चाहिए, समझे तुम? अरमान ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन अविनाश का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अविनाश फिर गरजा, तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारे झगड़े, तुम्हारी दुनिया, सब कुछ तुम तक ही ठीक था अरमान, लेकिन अब बात मेरी बहन पर आ गई है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरमान को दोष देने के चक्कर में अविनाश ये भी भूल गया कि राजवीर तो उसके ही परिवार का दुश्मन था, अरमान का नहीं। फिलहाल उसने अरमान को एक झटका देकर छोड़ा, लेकिन उसकी उंगली अब भी उसकी तरफ उठी हुई थी। अगर आस्था को कुछ भी हुआ ना, तो याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं होगा जिसने उसे अगवा किया है, बल्कि मैं होऊंगा, अविनाश सूर्यवंशी, और मैं तुम्हारी बुनियाद हिला दूंगा अरमान सिंधारिया। ये कहते हुए अविनाश गुस्से से पूरी तरह कांप रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया, हर कोई अविनाश के इस रूप को देखकर हैरान था। अविनाश की आवाज अब थोड़ी भारी हो गई थी, लेकिन गुस्सा अब भी साफ छलक रहा था। नम आंखों से वो भारी आवाज के साथ बोला था, तुम कहते थे ना कि तुम आस्था से प्यार करते हो, तो अब साबित करो अरमान, उसे ढूंढ कर लाओ, जिंदा सही सलामत, क्योंकि अगर उसकी सांसों पर भी जरा सा असर पड़ा तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
अरमान ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में भी अब आग जलने लगी थी। अविनाश की बातें सुनकर भी अरमान ने कोई सीधा रिएक्शन नहीं दिया, बस एक बार अपनी नजरें उठाकर उसे देखा, और उसे एक नज़र में इतना कुछ था कि अविनाश ने खुद ही तुरंत उसका कॉलर छोड़ दिया। और तभी अविनाश अचानक फूट फूट कर रोने लगा, मेरी बहन, मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे मेरी आस्था चाहिए, अभी चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। ये कहते हुए अविनाश अरमान के गले लगकर जोर जोर से रो पड़ा। वहीं अरमान बिना किसी इमोशन के खड़ा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसका सब कुछ उजड़ गया हो। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी एंजल आगे बढ़ी और अविनाश को संभालने लगी, लेकिन ठीक उसी वक्त रौनक के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने देखा कि सुमित और आकाश लगातार सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश कर रहे थे। रौनक तुरंत दौड़कर गई, उसने वो कैमरा उठाया जो उसके हाथ से गिरा था, और फटाफट उसकी रिकॉर्डिंग चेक करने लगी जो वो एंट्री के समय बना रही थी। जैसे ही उसने रश्मि की एंट्री की रिकॉर्डिंग देखी, अचानक उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। रुको, रौनक जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर सभी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। वंशिका तुरंत उसके पास आई, क्या हुआ? रौनक ने बिना कुछ कहे कैमरा उसकी ओर घुमा दिया। नानी माँ घबराई हुई आवाज़ में बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग, क्या हो गया है, मेरा दिल घबरा रहा है। एक मिनट, वंशिका ने कहा और तुरंत आगे बढ़ी। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग ली और फटाफट टीवी पर चला दी। अब स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था आस्था और अरमान एक साथ गाड़ी से उतरते हुए, नानी माँ एंट्री गेट पर आरती करते हुए, रश्मि और उसके बच्चे का स्वागत, मंगल गीत, ढोल नगाड़े, आहान और ध्रुव खुशी से झूमते हुए, रौनक खुद वीडियो बनाते हुए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और तभी आस्था, जो अरमान के बिल्कुल साथ चल रही थी, अचानक एक पल के लिए रुक गई। वो हल्का सा झुकी, जैसे उसके पैरों के पास कुछ गिरा हो और वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ कह भी रही थी, शायद मदद के लिए आवाज़ दे रही थी, लेकिन ढोल नगाड़ों के शोर में किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी का ध्यान उस पर गया ही नहीं। अरमान भी उस वक्त सभी की ओर देख रहा था, उसे इस बात का एहसास था आस्था उसके साथ ही है, और सिंघानिया मेंशन के आसपास तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी करने की, इसलिए अरमान बेफिक्र था। और फिर उन्होंने उस रिकॉर्डिंग में आगे देखा। अगले ही पल, जैसे ही बाकी सभी लोग अंदर एंट्री कर गए, एक काले रंग की गाड़ी अचानक पास आकर रुकी और उसमें बैठे किसी आदमी ने झटके से आस्था को अंदर खींच लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, और देखते ही देखते आस्था सबकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब हो गई। आखिर क्या हुआ आस्था के साथ, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM पर तेरे इश्क में।